बहनों भाइयों एवं बालक बालिकाओं, आज 12 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए मंगल में हो, भक्ति में हो और आप सब भगवान का नाम जपते हुए परम धाम की ओर प्रगति करें। अच्छा, अब मैं आपको श्री महाराज जी का एक और प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। कुमार जी यात्रा पर गए हैं, श्री महाराज कार्य की देखभाल स्वयं करते हैं। 7 अप्रैल को श्री महाराज जी ने बोंडा बनाने की इच्छा व्यक्त की। कच्चा नारियल, तिल और अनारदाना की चटनी बनाई गई। श्री महाराज ने स्वयं बोंडा पकाया। थोड़ी देर में एक भक्त श्री महाजन जी, जो सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, अपने परिवार सहित श्री महाराज से मिलने के लिए आए। उन्होंने भाई भाई प्रणाम किया। श्री महाराज बड़े प्यार से उनसे मिले, सबको घर में बिठाया, बुंदा और चटनी परोसी, सबने बड़े चाव से खाया। खाते खाते महाजन जी ने कहा, स्वामी जी को मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा, आपको तो है ना? इस पर महाजन जी बोले, नहीं, हमें भी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। सुनते ही श्री महाराज जी उच्च स्वर में कहने लगे, ए महाजन, ऐसा क्यों बोलते हो? घर में बाप दादा की फोटो क्यों लगाते हो? उन पूर्वजों की यादगार के लिए ना। जानते हो, स्वामी विवेकानंद कितने महान होने पर भी मूर्ति पूजा मानते थे। मूर्ति पूजा नहीं माननी होती तो क्या आवश्यकता थी गुफा में माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने की? मेरे पास नारायण नाम का एक भक्त आता था, वह सीधे बाबा की कुटिया में आता, माँ की गुफा में नहीं जाता था। एक दिन बाबा ने उसे बहुत समझाया तो वह गुफा में जाने लगा। श्री महाराज के इन सद्वचनों से महाजन जी को पता चला कि मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है, और हमें भी पता चला कि श्री महाराज जी चाहते हैं कि उनका प्रत्येक भक्त मूर्ति पूजा में पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास रखे। 28 अप्रैल को प्रातः 8 बजे ही थोड़ा सा भोजन खाकर श्री महाराज पीपल के चबूतरे पर गए। स्वयं अपने हाथों में छीनी पकड़कर उस भाग को तोड़ा जहां दरार आ गई थी और उसमें भलाई कर दी। 6 बजे तक नंबर कार्य किया। इतना दुबला पतला शरीर, उस पर 90 वर्ष की आयु, कैसे शरीर श्रम झेलता है? उनकी कर्म निष्ठा को देखकर पता चलता है कि किस हद तक उन्होंने अपने को प्रभु के हाथों का यंत्र बना लिया है। दूसरे दिन भी जाकर फिर से उस कार्य को पूर्ण करने में लग गए, परंतु उसे पूर्ण होने में 2-4 दिन लग गए। वे संभवतः जता रहे थे कि कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग है। यही 1986 मई का महीना है। एक भक्त लाज हलवाई आया है, उसका 18 वर्षीय बालक गुम हो गया है। जैसे ही भक्त ने प्रणाम किया, श्री महाराज ऊंचे स्वर में बोले, मारूं तेरे को, और दाएं हाथ उठा लिया। 3-4 बार कहा, मारूं तेरे को, तेरा बेटा बबलू के गुम होने के लिए तू जिम्मेदार है। इस पर भक्त ने कहा, मैं तो पंजाब चला गया था, कल मेरा दामाद मुझे लाया है। कहते ही भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर श्री महाराज जी ने कहा, कहां गया तेरा ज्ञान और सिद्धि? लोगों का तू इलाज करता है लेकिन अपने घर का इलाज नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अपने पांव से जुराव उतार कर भक्त के पांव में पहनाते हुए कहा, कोई किसी का नहीं है, सबका अपना अपना जीवन सुधरना चाहिए और सबको अपना अपना जीवन सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। तुझे तो अब भगवान का नाम लेना चाहिए। इस प्रकार समझा बुझा कर भक्त को किसी युवक की पीठ पर बिठाकर सड़क पर उतारा और कुल्लू जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। नई का महीना लगभग ऐसे ही व्यतीत हुआ। मई के महीने में चैल पहल रही। 23 मई शुक्रवार को डिस्पेंसरी भवन में आने वाले लोगों का कार्यक्रम है। तुम की विश्वंसी भवन बनकर तैयार हो गया है, वो उसमें हवन करने की योजना बनाई गई है। संघ के सभी अंतरंग सदस्य उपस्थित हैं। आज प्रातः से ही श्री महाराजियों इडली बनाने के लिए रसोई घर में है, लगभग 500 इडली बनाकर तैयार करती है। प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगातार वे टांगों के बल बैठकर कार्य करते रहे। सुमन कुमारी सूद इस कार्य में सहयोग दे रही है। सुमन यहाँ शिक्षा केंद्र में आती है, वो दूसरी ओर हवन का कार्य चल रहा है। कन्या पूजन करने के बाद भंडारा आरंभ हुआ, सबको प्रेम पूर्वक इडली का प्रसाद भी दिया गया। दिन भर भंडारा चलता रहा। सायंकाल महाराज जी ने चने की दाल का भूंगा बनाया और भक्तों को खिलाकर प्रसन्न हुए। कुछ दिन पश्चात संघ के कार्य करने के सदस्यों को साथ लेकर श्री महाराज जी एक कमरे में बैठे और उनसे बोले, आपको बारी बारी एक एक रात मंदिर में आकर सोना चाहिए। देखिए श्री महाराज जी की दूरदृष्टा अथवा भविष्यवाणी। उस वक्त मैंने नहीं समझी कि सचमुच ही एक साल के पश्चात वो उसमें आ ही जाएगा, जब कार्य करने की संस्था एक एक दिन एक एक रात को मंदिर में मेरा साथ देने के लिए आएंगे। श्री महाराज जी के जाने के पश्चात उसी दिन शीघ्र ही कमेटी के सदस्यों ने एक मीटिंग की और उसमें प्रस्ताव पेश किया कि एक वर्ष तक प्रत्येक सदस्य, चाहे वो भाई हो चाहे वो दूसरा भक्त हो चाहे लाला साधु राम जी हो, एक एक दिन वो अपनी पत्नी सहित मंदिर में श्री महाराज जी के पास सोने आएंगे। लेकिन महाराज जी ने कब कह दिया, 1986 में, जबकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, उन सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं थी आने की। मेरी कैंटीन भाग में शहरपुर तथा मंदिर से भक्त आए, उनकी देख रेख में श्री महाराज बहुत ही सजग हैं और वो भक्त एक सप्ताह मंदिर में ही ठहरे। श्री महाराज जी ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत ही नहीं किया, स्वयं उनके हक सेवा की और हमें भी निवेद को कुमार जी को उनकी सेवा के लिए तैयार किया और बड़े प्रसन्न होकर के वो लोग अपने घर वापस गए थे। जून एवं जुलाई 1986, 17 जून मंगलवार को एक भक्त से दूर तमाम अपनी पत्नी सहित दर्शनों के लिए आए हैं। मंदिर में भीड़ लगी है। श्री महाराज ने आए हुए भक्त को आज्ञा दी कि वे भूमतर मेले में जाकर मिट्टी के घड़ा ले आए। भक्त दौलत राम सूद जी आज्ञा का पालन करते हुए सांस में 3 घड़ों को लेकर मंदिर में लौट आए। श्री महाराज जी ने घड़ों में पानी भरकर दक्षिणा डालने को कहा। दौलत राम जी ने बड़े प्रसन्न होकर उन भक्तों में भक्तों के साथ उन घड़ों में जल भरा और फिर उसमें दक्षिणा भी डाली और उन्होंने कहा कि श्री महाराज जी की मेरे पर बहुत अनुपम कृपा है। 18 जून को निर्जला एकादशी है, इसलिए प्रातः काल से ही दूध का शरबत बनाकर उन घरों में रख दिया गया। दिन भर भक्तों ने आने जाने वालों को ठंडा शरबत पिलाया, भंडारा बंद रहा। सायंकाल श्री महाराज जी ने कहा, सेवा परम धर्म है। मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। श्री महाराज कार्य की देख रेख के लिए प्रातः ही कार्य पर चले जाते हैं। दिन में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। कभी कभी लकड़ी का मिस्त्री नहीं मिलता तो श्री महाराज जी ने एक रंधा मंगवा लिया है और उसमें पड़ने पर स्वयं ही खिड़कियां आदि बनाना शुरू कर देते हैं तथा अत्याधिक परिश्रम करने के कारण थक भी जाते हैं। आजकल प्रतिदिन एक भक्त मंदिर में निवास करने भी आता है। जून मास के अंत में श्री महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही। जुलाई के महीने में भी ऐसी कि वो अस्वस्थ जैसे रहे। कभी कभी पलों की बातें करते हैं। 21 जुलाई को रामनामी यज्ञ पूर्ण होगा। अंतरंग भक्त दूर दूर से आए हैं। पठानकोट से श्रीमती कुसुम सूद, जम्मू से श्रीमती उषा रानी, शिमला से श्री जगदीश सूद, मनाली से श्रीमती कमला सूद और अन्य भक्त भी आए हैं। सब ने मिलकर कार्य संभाला है। श्री महाराज की अवस्था परमहंस जैसी अवस्था है। शिक्षा केंद्र के बालक बालिकाएं भी एकत्रित हैं। राम नाम का 125,000 जाप तथा तिल जो तो चावल की सेवा सामग्री का हवन करने के लिए शहर से कुल्लू से 5 पंडित भी आए हैं। श्री महाराज जी को उनकी सेवा का विशेष ध्यान है। 20 जुलाई को ही 5 पंडितों द्वारा महामंत्र का जाप आरंभ हो गया था। साई श्री सत्यनारायण की कथा हुई। रात्रि सबको आदर पूर्वक भोजन खिलाया और शयन का प्रबंध भी किया। प्रातः 3 बजे ही शैया त्याग कर भक्त अपने आने वाले लोगों से बड़े प्यार से मिलते। 6 बजे महायज्ञ आरंभ हुआ। श्री महाराज अपने कुटिया में ही है। 10 बजे हवन के बाद कन्या पूजन करके पूर्णाहुति हुई। तत्पश्चात दान दक्षिणा देकर पंडितों को भोजन दिलवाया। स्वयं बैठकर उन्हें भोजन खिलाया। हजारों श्रद्धालु मंदिर में आ जा रहे हैं। श्री महाराज जी कभी हर नग्न अवस्था में ही परमहंस अवस्था में ही वहाँ पहुँच गए और महायज्ञ को प्रणाम करके मुझे कहने लगे, माँ लाओ दे लाओ। मैंने उनके सामने रुपये रख दिए तो वह अपनी अपूर्व मस्ती में मस्त होकर किसी को 5 और किसी को 10 रुपए का नोट देने लगे। फिर वो गुफा के पास खड़े होकर भक्तों को सारा दिन पैसे देते रहे। मानो आज वे कल्प तरु बन गए हैं। जो मांगना है मांग लो। श्रद्धालुओं ने उनके इस रूप को नहीं पहचाना, लेकिन अंतरंग भक्तों ने पहचान लिया कि श्री महाराज जी आज कल्प तरु बने हैं। ये भगवान विष्णु के अंश हैं। श्री महाराज जी ने तब आज्ञा दी, अब से यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन हवन होगा। उस दिन से प्रातः प्रतिदिन यज्ञ स्थल में हवन होता है। जुलाई मास में ही 8 तारीख को श्री बिहारी लाल सूद जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर लाल तथा हिंदी भाषा के निदेशक श्री बंसी राम शर्मा को लेकर श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन किए और श्री महाराज जी ने भी उनकी सेवा जलपान द्वारा की। डॉक्टर मनोहर लाल ने दिल्ली जाकर हिंदुस्तान नामक पेपर में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था एक और वैष्णो देवी कुल्लू में। ये शीर्षक पढ़ने के योग्य है। अब मैंने कटिंग भी रखी थी लेकिन जब मैं सिंगापुर गई उसके बाद कुछ हलचल मची मंदिर में, कागज इधर उधर हो गए, पेपर तो मेरे बहुत से पेपर उसमें गुम हो गए हैं। लेकिन एक डॉक्टर मतलब PhD प्राध्यापक है जो विश्वविद्यालय का, उन्होंने जो लेख लिखा था ये कोई वैष्णो देवी कुल्लू में वो तो सचमुच पढ़ने योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपने वाणी को विराम देते हुए गीता माँ जय माता।